रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो। हरि रामा मुर भवन में या पद समान कोई, अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत। अब कृपा मो पर करहु यो हरि देव कहंत। सदगुरु से ती विनती पर ब्रह्म सु परणाम। अनंत कोटि संत रामदास निषदिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। वैशाख सुदी षष्ठी संवत 1995 कर्णवास दोपहर दिनांक 5 मई 1938। आज ध्यान के विषय में कुछ बातें कहता हूं। ध्रुव जी ध्यान में ऐसे मगन हुए कि भगवान प्रकट हो गए तब भी नेत्र नहीं खोले। उन्हें पता ही नहीं चला कि भगवान आ गए। नारद जी ने जैसा ध्यान बताया उसी में ही मगन हो गए। अपने इष्ट के स्वरूप में मगन होने का नाम ध्यान है। क्या मार्मिक बात है। अपने इष्ट देव के रूप में मगन हो जाए इसी का नाम ध्यान है। ध्रुव जी को अपने तन मन का ध्यान ही नहीं रहा। आज के पूर्व जितने भी संत हो गए उन सब ने कहा है कि ध्यान सबसे ऊंचा साधन है। गौतम बुद्ध ने बता दिया कि एकांत में बैठकर ध्यान करने से कितना लाभ होता है। परमेश्वर में सारी चित्त वृत्ति को निरोध कर देना श्रेष्ठ है। योगश्चित्त वृत्तिर निरोध है। गीता में कहा है केवल ध्यान से प्राप्ति हो जाती है। बहुत जगह कहा है, दूसरे अध्याय में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर है। ऐसे ही योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना योमां पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित है। अनन्य चेता सततम योमां स्मरति नित्यशः। गीता के ध्यान में जब विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शर्त नहीं डाली भगवान ने। एक निरंतर चिंतन के सिवा कोई शर्त नहीं डाली। ये घर का काम छोड़ो कि वहां जाओ कि ऐसा करो, कुछ नहीं है। अनन्यास चिंतयंतो माम, अंदर के चिंतन के विषय में ही कहा है। जो आपके संसार में कोई काम में बाधा नहीं देते, यदि ध्यान में भगवान के ध्यान में संसार के काम न और बाधा आ जाए, ऐसा गीता का ध्यान नहीं है। मैया विश्य मनो ये माम मैये व मन आधत्स्व मई चानन्य योगेन मांच योग्य विचारेण यो मामेव मसम्मूढ़ो मन मना भव मत भक्तो। क्या विलक्षण भगवान घोषणा करते हैं, केवल ध्यान से प्राप्ति हो सकती है। ध्यान करते करते थोड़ी सी भी आलस्य की वृत्ति आए तो थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं ताकि आलस्य वृत्ति भग जाए। वैसे आठवें अध्याय में अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना पर्युपासते, ये साधन थोड़ा कठिन मालूम देता है, परंतु ध्यान करते रहने से फिर आगे कठिनता नहीं रहती। जब तक भगवान के तत्व प्रभाव को नहीं जानते तब तक साधन कठिन होता है। जब भगवान की भीतर में जरूरत समझने लग जाए, आवश्यकता समझने लग जाए, भगवान को अपना खास हितेशी मानने लग जाए, उनके तत्व और प्रभाव हृदय में बैठ जाए, तब तो आपकी ऐसी स्थिति हो सकती है आप चाहो तो ध्यान छूटे नहीं। भगवान सर्वोत्तम है, भगवान मेरे लिए सर्वोत्तम है, मेरे पास जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, जो भी पद है, जो भी योग्यता है, वो मेरे काम की नहीं, जो मेरे भगवान काम के हैं, मेरे लिए सर्वोत्तम है, ऐसा समझने वाला फिर उनको कैसे छोड़ सकता है। जिस प्रकार हीरे को मर्म से जानने वाला आदमी सोना चांदी की तरफ ध्यान ही नहीं देता, वो हीरा चाहिए, क्योंकि हीरा सोना चांदी से कई गुना कीमती होता है। ऐसे ही संसार का आराम सुख, स्वर्ग का लोक, ब्रह्मलोक, इनके सुख, ये सब कोई काम के मालूम नहीं देते। गृहस्थ में स्मरण मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अंत काले च मामेव, अंत में एक बार भी स्मरण कर ले, ये अंत काल में विशेष छूट है। तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, ये भगवान आज्ञा देते हैं। जिस प्रकार अर्जुन युद्ध करते भी स्मरण करता था, वैसे हम भी दुकान का काम, घर का और काम करते हुए स्मरण कर सकते हैं। जैसे गोपियों का सब काम करते हुए भी, गोपियों का सब काम करते हुए भी भगवान के चरणों में मन रहता था, हम भी घर दुकान का काम गौण वृत्ति से करें, मुख्य वृत्ति से भगवान का स्मरण करें। आपको बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं। जैसे गौ वन में घास चरने जाती है, तो आप विचार करो, गाय बहुत हरा हरा सुंदर घास चरती है, परंतु उसके मन में बछड़ा बैठा रहता है। वन में तो गौण वृत्ति से जाती है, पर मन में बछड़े का हरदम चिंतन करती है। वही गाय जब वन से लौटती है, बछड़े के याद में उसका दूध झरने लग जाता है, वो जल्दी जल्दी जाकर बछड़े को दूध पिलाना चाहती है। ऐसे भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अंदर तो भगवान को रखें और बाहर गौण वृत्ति से संसार का काम करें। जैसे नटनी होती है, नाचती है, पर उसका ध्यान अपने पैरों पर रहता है। सर्कस वाले डोरी पर चलते हैं और एक आदमी आगे एक आदमी पीछे, दोनों के बीच में लकड़ी रहती है और वे दुनिया को देखते भी हैं, लेकिन ऐसी सावधानी रखते हैं कि डोरी से पैर फिसल न जाए, और इस कदम से रखते हैं कि आगे और पीछे वालों के बीच में लकड़ी गिर न जाए, और वो दुनिया को देखते भी रहते हैं। तो दुनिया को देखना कोई काम नहीं, अंदर से वे अपने काम में ख्याल रखते हैं। ऐसे ही बाहर से संसार का काम करते हुए अंदर से भगवान से जुड़े रहना चाहिए, ये ध्यान का उपाय है। कोई समझ ले कि भाई अभी भजन क्यों करें, भगवान ने तो अंतिम समय में छूट दे रखी है, अंतिम समय में भजन कर लेंगे, उससे बड़ा धोखा होगा। क्योंकि वो वर्तमान में भजन को छोड़ने का अभ्यास कर रहा है, इसलिए जब मृत्यु का समय आएगा तब भी उसके मन में यही रहेगा कि मरेंगे तब करेंगे। उसको क्या पता कि अभी मरने वाले। ये तो भगवान ने दया के वचन कहे कि जो कभी भजन नहीं किया, किसी कारण से अंतिम समय में स्मरण हो आया तो मैं कल्याण करता हूं। ये तो भगवान की दया है। भगवान ने हमको लापरवाह करने के लिए थोड़ा ही कहा है, तो भगवान की दया है। जैसे एक आदमी देखता है भाई अब हमारे घर में रात की रोटियां बच गई, खिचड़ी बच गई, चावल बच गए, साग बच गया, तो चलो अपने तो काम नहीं आएगा लेकिन मंगतों के काम आ जाएगा, और वो मंगतों को देता है तो वो दानी होकर थोड़ा ही देता है, और मंगता को वो मिलता है उसकी दया से, दया के कारण से कि भाई वस्तु का दुरुपयोग न हो, आदमी के काम आ जाए। ऐसे भगवान ने दया के वचन कहे कि अंतिम समय में भी मेरा स्मरण करेगा तो कल्याण हो जाएगा। हमको तो मानव शरीर भगवान ने भजन ध्यान के लिए ही दिया है, और कोई हमारा दूसरा काम नहीं है। दूसरे काम जब सब जगह हो सकते हैं और वही काम मनुष्य शरीर में करेंगे तो फिर मनुष्य शरीर में और औरों में क्या अंतर हुआ। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्मन गति जाय सियावर रामचंद्र की जय। आत्महत्या, शरीर को जल में डुबाकर, फांसी लगाकर, आग लगाकर मरना, जहर खाकर मरना, ये आत्महत्या है। मन शरीर जो आत्मकल्याण करने के लिए काम में नहीं लेता, विषय भोगों में काम में लेता है, वो आत्महत्यारा है। हत्या करने वाला तो शरीर की हत्या करता है, और वो आत्महत्यारा है वो ज्ञान की हत्या करता है, उसको ज्यादा पाप लगता है। हम रात दिन किसी भी वस्तु का चिंतन तो करेगा ही, तो भगवान से बढ़कर कौन है। चिंतन किए बिना आपका दिमाग खाली तो रहेगा नहीं, तो फिर अच्छे का ही चिंतन करो ना। अमृत में भगवान को छोड़कर विषय में रमण करने वाला दुर्गति को ही तो प्राप्त होगा। जिसने परमात्मा का एक क्षण भी ध्यान कर लिया, उसने अपने सब पितरों को तार दिया, उस आदमी ने पृथ्वी का दान दे दिया। इसलिए प्रतिदिन एकांत में अवश्य ध्यान करना चाहिए, व्यवहार काल में भी ध्यान करना चाहिए, ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त समय है, सबसे बढ़िया समय सुबह जल्दी उठो। सब लोग सोते रहे उस समय उठ करके निरालस्य होकर के भगवान का ध्यान करो। वो वातावरण आपका साथ देगा। वृत्तियां रात को सोने से शांत रहेंगी, कोई दूसरा संकल्प उठेगा नहीं। उस ध्यान के अंदर मग्न रहो। आप सोचो, युद्ध शरीर की क्रिया में अर्जुन को भगवान ने ध्यान के लिए कहा है, ये कोई मामूली बात है? आपका व्यवहार तो बहुत सीधा साधा है। युद्ध में तो ध्यान बाण की नोक के साथ अगले का लक्ष्य रहता है, फिर भगवान का भी ध्यान करना है, ये मामूली बात नहीं है। पर अर्जुन को कोई कठिन नहीं लगा। भगवान के चिंतन में एक बार आप डूब जाओ, फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। उसे छोड़कर जो विषयों में जाएगा तो वो अमृत को छोड़ करके जहर को पीने के समान लगेगा। सारे संसार को दर्पण बना ले तो सारे संसार में सब जगह भगवान ही भगवान दिखेंगे। जिस प्रकार बलदेव जी को बछड़ों में कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे, इसी प्रकार सब में भगवान को देखना चाहिए। कोई भी आदमी आपसे मिलता है, आप उसके अंदर भगवान की सूरत देखो, फिर देखो उसका आपका बात करने का ढंग और ही हो जाएगा। ये सिद्धांत की बातें हैं, इनको हृदय में खूब धारण कर लो। हमेशा ध्यान हो सकता है, और भी ध्यान की अनेक युक्तियां हैं जिससे ध्यान रहते हुए संसार का काम हो सकता है। थोड़ा अभ्यास किया जाना चाहिए। प्रतिदिन एकांत में प्रातःकाल एक घंटा ध्यान के लिए समय निकालो। जो आपका इष्ट है, निर्गुण है, निराकार है, साकार है, राम है, कृष्ण है, शिव है, जो आपका इष्ट है उसका ध्यान करो। वो एक घंटे का समय सारे दिन याद आएगा, कि उस समय आपको जो तृप्ति होगी, सारी इंद्रियों को, बुद्धि को, सबको एक खुराक मिलेगी, उससे आपके अंदर शरीर में प्रसन्नता की लहर दौड़ेगी, फिर आपको ये संसार के विषय खींच ही नहीं सकते। जैसे दोनों समय भोजन करने से तृप्ति रहती है, ताकत रहती है, इसी प्रकार ध्यान करने से तुष्टि पुष्टि बनी रहेगी। चलते फिरते, सोते, खाते पीते ये समझे मेरे भगवान मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ ही खा रहे हैं, वो मेरे साथ ही पी रहे हैं, वो मेरे साथ ही बैठे हैं। अंदर ही अंदर कभी अकेले में आप भगवान से खूब बातें भी करो, मन से ही करो। अपने आप के दो रूप बना लो, एक रूप भगवान है, एक रूप में आप हो, अब बातें करो। ये शुरू शुरू में आपको एक तमाशा दिखता है, परंतु आगे आपको बहुत बड़ी चीज मिलेगी। जैसे शुरू में कहा है कि योगक्षेम का वहन करता हूं, अप्राप्त की प्राप्ति, जो वस्तु हमको नहीं मिली है वो मिलती है, वो परमात्मा है, वो जल्दी मिलते हैं और वे साधन की पूर्ति भी करते हैं, और कभी ऐसी भी कृपा करेंगे आपको दर्शन भी दे सकते हैं। पर आप क्यों कहो कि हमें दर्शन देओ? आप तो उस ध्यान को ही मान लो कि भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं, हमें अलग से जरूरत नहीं है। फिर देखो कैसा आपका भगवान में और भगवान का आप में आकर्षण एक दूसरे को खींचने वाला होगा। आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि भगवान इस उम्र में हमको मिल सकते हैं, फिर भी भगवान को याद ही नहीं करूं तो ऐसा जीवन तो हमारे लिए धिक्कार हो जाएगा। भगवान से बार बार ये मांगो कि हे प्रभु, मेरी मांगने की आदत जाती नहीं है, इसलिए मैं आपसे अनन्य प्रेम मांगता हूं, और कोई चीज मांगू तो मुझे कतई मत देना, तड़फाना, लेकिन प्रेम देते रहना। नाथ एक वर मांगू मोहि कृपा करि देउ, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनी ने उसियावर, रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार ध्यान से भगवान की शरण होने पर भगवान मिलते हैं। अतएव हमको प्रातःकाल फिर या सायंकाल भगवान का ध्यान करना चाहिए और मस्त हो जाना चाहिए। भोजन के पूर्व गंगा के किनारे अच्छा ध्यान लगता है, भोजन के बाद तो थोड़ा आलस्य आता है, उस ध्यान की मस्ती में मस्त रहो। ध्यान नहीं होता हो तो ध्यान की जो मस्ती है उस मस्ती में ही मस्त रहो। इत्र यदि नहीं मिला है तो इत्र की कहीं सुगंध मिली, सुगंध में ही मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही ध्यान में मस्त रहो, रात दिन प्रेम पूर्वक श्रद्धा करे तो फिर कहना ही क्या है। ध्रुव जी के समान 3 दिन में यदि ध्यान कर ले तो शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ध्रुव जी के काल में तो ध्रुव जी को 6 महीने में मिले, आज के युग को देखते हुए भगवान दया करके 3 दिन में मिल सकते हैं। ऐसे डूबे रहे शरीर का ध्यान ही न रहे, और ऐसा ध्यान करते करते यदि मृत्यु हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, वो तो सोने में सुहागा है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ऐसा सुगम मार्ग होते हुए हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके ये शोक की बात है। जैसे मछली का जीवन जल ही है, जैसे मछली का जीवन जल ही है, ऐसे ही परमात्मा ही हमारा जीवन बना रहे ऐसा मानकर विचरने वाला धन्य है। नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, कोई महापुरुषों की कृपा है, धाम की कृपा है, इतने पुराने लेख हमने मंगाए भी नहीं थे, अपने आप भेज दिया, अपने आप गीता प्रेस से, ये गीता भवन से, कि वही सेठ जी के लेख हैं वहां भेजो, सिंथल भेजो। हमें पता ही नहीं कि ऐसे लेख हैं कि नहीं, कुछ पता नहीं, कभी फोन किया नहीं। कितना बढ़िया लेख है, भगवान की कृपा है अपने पर, महापुरुषों की कृपा है, उनका भाव। 1938 अपना तो जन्म ही नहीं हुआ, आज से 76 वर्ष पहले गए, और आज अपने को लेख मिल गया है, कृपा भगवान की। लेकिन सेठ जी के लेख कल्याण में पढ़ते तो लगता ये है विलक्षण पुरुष कोई। अब कौन जयदयाल जी है हमें क्या पता, कौन जयदयाल जी है, कहां के हैं, कुछ है कि मारवाड़ी है कि और कोई है, कुछ पता नहीं था कुछ भी। और पता चला कि एक गीता प्रेस खोल रहे थे, गीता प्रेस वो क्या खोलेंगे, गीता हमको याद है ऐसी थोड़ी याद है जयदयाल गोविंद का को, नहीं, हम जानते हैं गीता के विषय में। लेकिन जब जयदयाल जी गोविंद का की एक पतली सी पुस्तक हिंदी का अर्थ वाली पढ़ी तो करे, बहुत विलक्षण पुरुष है।